सप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वांश से देवी प्रणमामि हरि आदेवी काकू सर्वगत वजयाद्यवाचा जाते निपत्त भूमि दंडवत उर्वशी अस्य प्रसाद अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्द्रीधरं जट्टं जादुकरोति संविदधतं पट्टं करस्तस्या वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसत्कामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलप्रियं ज्ञानिनं भक्त्याभिहीनापराजलक्ष्यैः सुतासुतामाभि कामयी काम शरण प्रपन्ना बिंदे नमस्ते गौर चंद्राय राधिकाई कराय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राप्तजन्तमलोके सिंहपेदपेत्यं द्वैपायनो विरह साकरया दुभाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽपि सबसे श्रेष्ठ सुमति राधिका जी, इसलिए राधा प्रेम ही सबसे श्रेष्ठ छात्र है, इससे बढ़कर तो कुछ नहीं। और इसके लिए अन्य राधि को उन्होंने भगवान का विदेश पर बतलाया। महाप्रभु जी ने भंगी से पूछा, राधा जी को चोरी करके ले गए, यदि प्रकट रूप में सबके सामने सबको त्याग करके ले जाते समय से राधा जी सबसे श्रेष्ठ तो उसके बदले में उन्होंने बासंती राशि गोविंद जी का एक श्लोक उद्धृत किया और उसके द्वारा संसारी रति संसार वासना भक्त सिंह फलान राधा माधा हृदय सत्यादि इत्यादि उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्लोक का अर्थ ये बतला रहे हैं। दुई श्लोकर अर्थ विचारी ले विचारी तो उठे गए उन्होंने तो श्लोक श्लोक का जब हम विचार करते हैं तो राधा की महिमा प्रकाशित होती है और मानो अमृत की खनी खनी माने
खान
खान जिससे कि कोयला पेट्रोल और सब चीज़ें निकलती हैं, ऐसे ही अमृत की खनी जन प्राप्त हो जाती है। सतकोटि गोपी संगे राज विलास एक्स सतकोटि गोपी एक सब कोटि गोपी लिखा है, किंतु इसका तात्पर्य अगणित से है। अग्रत गोपियां थी, एक एक से परम सुंदर, लक्ष्मी जी को भी माफ करने वाली एक एक गोपियां थी। उन लोगों के साथ में कृष्ण रास विलास कर रहे, एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण हैं और एक मूर्ति से राधा जी के पास में हैं। साधारण प्रेमी देखी सर्वत्र समता, राधा कुटिल प्रेम वैगमता, सबने साधारण प्रेम देखा राधा जी ने। हमारे पति जैसा प्रेम हमसे भी नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ भी नृत्य कर रहे हैं, उनके हाथों में हाथ मिला रहे हैं, हमारे हाथों में हाथ मिला करके नृत्य कर रहे हैं। ऐसा देख करके सर्वत्र समता, राधा कुटिल प्रेम वैगमता, राधा जी का यह प्रेम कुटिल, वो वाम भाव ग्रहण कर, इसी को कह रहे हैं उज्ज्वल नीलमणि के हमारे लोग गोस्वामी जी, अहेरीव गति प्रेम प्रेम न स्वभाव कुटिला भवे अतो हेतु अहेतोश्च जूनोर्मान उपनिषद। सांप टेढ़ा होता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, जब तक जीवित रहेगा तब तक जरूर टेढ़ा मेढ़ा ही चलेगा, वो सीधा नहीं, मरने के बाद ही यदि सीधा सांप को देखो तो समझो क्या
मरा हुआ है।
ऐसे प्रेम भी कुटिल होगा, टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, प्रेम की गति भी टेढ़ी होती है, यदि वो सीधी रही तो ये दाक्षिण्य भाव आकर के प्रेम कम होगा। ऐसे ही प्रेम की रीति है, उसी की छाया इस जगत में है, वहां पर काया है, यहाँ पर छाया है। तो इसी हेतु से, इसी कारण से प्रेम की गति कुटिल है, तो वो हेतु हो और न हो, कोई कारण हो या न हो, जूनोर मान उदंचति, जूनो माने राधा और कृष्ण दोनों, दोनों में मान उदित होता है, कोई हेतु हो ना है तो राधा जी कभी मान कर लेंगे और कभी कृष्ण भी मान कर लेंगे। राधा जी कृष्ण को मान सिखला रही है, कैसे मान होता है, वो मान सिखलाते सिखलाते राधा जी ने कहा जैसे अब कुछ कुछ सीख गए कहा मैं, अब कुछ कुछ थोड़ा सा मान करना सीखा। अच्छा तो कैसे होता है, अच्छा ठीक, फिर जब मैं कृष्ण ने मान कर लिया और राधा जी हाँ जहाँ बोलाए बोले नहीं, उधर उधर मुख कर गए, ऐसा कठोर गंभीर मान किया जो वो माने ही नहीं, कहते हमने तुम मैं तुम्हारी शिक्षा दू, मैंने तुमको सिखला और हम ही से तुम मान करने लगे। ये मान बिना मान के ही प्रेम नहीं हो, इसलिए कहते हैं ये मैं मान होता है परस्पर को सुख देने के लिए, इस जगत में होता है दुख देने के लिए।
कृष्ण ने
मान किया है, एक बार मान किया तो मान ही नहीं छोड़ रहा है, राधा जी महाभिहार हो। वो मां के लिए कहते हैं प्रेम सरोवर के लिए एक फूल, राधा जी ने थोड़ा सा कुछ कर करके बांधा एक फूल लेकर के नीचे शरीर पर छोड़ दिया
कमल
कमल, और उसे उनको आघात लग गया, वो मन खड़ा करके चले गए और वहाँ पर राधा जी तट कराने लगे। उनको भी होता है, राधा जी को तो होता ही, इसलिए उदंचति इसलिए उनको हेतु अहेतु भाव से, वहाँ पर कोई हेतु नहीं था, कृष्ण ने उनका अपमान नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि हम और वो क्या बराबर हैं, इसलिए उनको मान हो गया। क्रोध करी रात छाड़ी गला मान करी तारे ना देखी अब बैकुल कविदा हो, ये सबका मन हरण करने वाले हैं, आज उनका मन हरण किसी ने कर लिया और करने के कारण ये व्याकुल हो गए, अब व्याकुल होकर के चारों तरफ में लगे राधा जी के। सम्यक वासना कृष्ण इच्छा राशि। किसी भी कार्य के लिए वासना प्रधान, वासना सब कार्यों का कारण है। पाप के लिए भी, पुण्य के लिए भी, किसी भी कार्य के लिए ये वासना
होती है।
वासना हृदय में होती है, यह वासना होती है पूर्व पूर्व जन्मों से संस्कार के अनुसार में ये वासना, वही वासना होती है। उस वासना को दृढ़तापूर्वक दबाया भी जा सकता है और यदि उसको हम लगातार किसी साधन के द्वारा अच्छा जान करके प्रकाशित करें, विकसित करें, तो विकसित भी हो जाएगी। ये वासनाएं यदि बुरी हैं तो उनको दमन करना चाहिए, किंतु बद्ध जीव कर नहीं पाता। बस वही फिर कारण होकर के फिर वही वासना कामना बनती है। वासना है सूक्ष्म रूप और कामना है उसका कुछ स्थूल रूप, और उसका स्थूल रूप है कार्य, और नहीं होने पर वो कार्य क्रोध हो जाता है और क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से एकदम सर्वनाश। इसलिए बुरी वासनाएं हृदय में हो तो उनको दमन करने की चेष्टा करें। कैसे होगा वो सत्संग के द्वारा, बिना सत्संग के वो बुरी वासनाएं की। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं राग संबंधी वासना, कृष्ण प्रेम संबंधी वासना, तो सम्यक वासना कृष्ण इच्छा रासलीला। कृष्ण में भी वासना होती है, जैसे रासलीला के प्रथम में कला श्लोक में वहाँ पर मनश्चक्रे उनकी ये वासना है। जहाँ भक्तों में कोई वासना आई, भगवान के भी हृदय में वासना आ जाए जरूर आएगी। गोपियों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण के हृदय में वासना, और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गोपियों के हृदय में, या समस्त प्रकार के भक्तों में ही वासना होती है। कृष्ण रास की लीला, रास लीला करेंगे, ये उनकी सम्यक वासना है। किस लिए रास लीला वासना के राधिका श्रृंखला, रासलीला का मूल सूत्र है राधिका जी। राधिका जी को प्रसन्न करना ही उनके रासलीला का प्रथम मूल उद्देश्य भी कभी कथन कर, इसीलिए उन्होंने रास कहा। बिना रासलीला नहीं ताप चित्ते मंडली छाड़ दिया गया। राधा राधा जी जब चली गई तो कृष्ण उनको खोजने के लिए रास खोज लिए। किसके साथ में रास, किस लिए रास, जब राधिका ही नहीं रही, मंडली छोड़कर, मंडली मैंने समस्त गोपियों को साक्षात प्रत्यक्ष रूप में छोड़ दिया और राधा जी का अन्वेषण करने के लिए चले। इतस ततः भ्रमिया, कहाँ राधा ना पाइया, राधा जी को खोजते थे सबको छोड़ कर, कहीं नहीं जब मिली तो विषाद करने लगे। काम वाने खिन्न हैया, प्रेम के द्वारा खिन्न हो। ये हम लोग बृहद भगवतामृत में देखते हैं, गोप कुमार जब भगवान कृष्ण से मिले, जब कृष्ण गोचार करने के लिए गए, तो जब ये मिले तो कृष्ण भी इनको स्पर्श करके, उनको स्पर्श करके दोनों मूर्छित होकर के देखे। जब बड़ी मुश्किल से वो जब मूर्छा उठी हट गई तो कृष्ण रह कह रहे हैं, मैं तुमको एक जन्म से नहीं कोटि कोटि जन्मों से तुम्हें किसी प्रकार से अपने यहाँ लाने के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। मैं कोई एक बहाना खोजता था कि इस बहाने से तुम हमको मिल जाओ और तुम हमारे पास में चले जाओ, किंतु हमको कोई बहाना भी नहीं तुम देते थे कृपा करने के लिए। बहाना मैंने क्या,
कोई स्वीकृति,
कोई भी किसी प्रकार से भी तनिक भी सुयोग मिलता है तो मैं तुमको ले आता, तो तुम हमको किसी प्रकार से सुयोग ही नहीं दिया मिलने के। हम जीव जैसे। अब ये सुजोग दे रहे हैं भगवान, हम हरि कथा सुन रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, उसे हरि नाम कर रहे हैं, ये भगवान को सुजोग मिल रहा है। भगवान बद्ध जीवों के लिए जो भगवान का स्मरण नहीं करते उनके लिए सुजोग होते हैं, बेचारों को कैसे सुजोग दें, कैसे उनके यहाँ किसी देश में जाएंगे साधु देश में, साधु मान करके ही उनको कुछ दिया, उनसे संपर्क किया, मीठी वाणी भी बोला, एक भी कोई चीज दिया, महात्मा जी भूख लगी है खाएंगे, अच्छा ले आओ तो पानी पी जाओ, अवश्य उनके लिए सुकृति, ये सुकृति होकर के जो एक बातें आपको कह दी आपके मन में लग गई और फिर आप धीरे धीरे अंत में ले जाए, कोई भी सुकृति होनी चाहिए, जैसे तैसे भी वो कोई बहाना नहीं, तो इसलिए वहाँ पर हैं भगवान के हृदय में भी भक्तों के लिए खोजते हैं, राधिका जी भी खोजेंगे, ये तो कोई बड़ी भारी बात है, प्रत्येक भक्त के लिए उनके हृदय में ऐसी वासना होती है ये जीव हमसे कैसे मिले, हमारी कैसी सेवा करें। तो शतकोटि गोपी से नहे काम निर्वापन, कोटि कोटि गोपियां हैं किंतु कृष्ण के काम का निर्वापन नहीं हो रहा, कृष्ण के हृदय में प्रेम को ग्रहण करने की जो भूख है और उसमें जो अग्नि होती है जठराग्नि, वो निर्वापित नहीं हो रही, वो कैसे होगी, और कुछ बाकी है, ये सब जितनी गोपियां हैं ये क्या हैं, राधा जी की अंश कला कैपूर प्रकाश इत्यादि सब, एक एक भाव एक एक गोपियां हैं, अष्ट प्रधान भाव अष्ट गोपियां हैं, अष्ट शक्तियां, इसके बाद में अप्रकाशित सब शक्तियां, सब राधा जी ही बनी हुई हैं कृष्ण के विभिन्न तरह के कामों को प्रकाश किए करने के लिए, तृप्त करने के लिए, मूल में राधा जी, राधा जी मूल लता है और शक्तियां सब इसलिए सभी मिलकर के राधा जी सब प्रकार से उनकी इच्छाओं को पूर्ति करें। राधा जी यदि केवल दक्षिण भाव से ही उनकी सेवा करें तो वाम भाव जो कृष्ण में रस की है वो पूरा नहीं हो सकती, उसमें भी तरह तरह के कितने प्रकार हैं, इसलिए वो चीज नहीं होगी, जब तक राधा पूर्ण नहीं आएंगी नहीं रहेंगी, कृष्ण का आनंद परिपूर्ण मात्रा में नहीं, क्योंकि हम लोग देखते हैं द्वारका में 16,000 भैंसियां हैं, एक एक से परम सुंदरी रूपवती गुणवती हैं, किंतु रात में विषाद करते हैं, मुनि के पास रहकर के विषाद करके राधे तो ललिते विषाद है इत्यादि करते हैं, इसलिए राधिका का गुण कितना है ये अनुमान हो सकता है, जिसके लिए कृष्ण ही स्वयं विरह से विलाप कर रहे हों, खिन्न हो, स्वयं भगवान परम ब्रह्म स्वरूप भगवान जिनके लिए, वो राधिका जी का कैसा गुण होगा, प्रभु कहे जे लागी आई नाम भगवान, प्रभु कहते हैं खूब प्रसन्न गदगद हो गए, जिसलिए हम आए मैं आया, वो तत्व वस्तु है जो मोर ज्ञानी, मैं उसको अभी समझ लिया, मुझे ज्ञान हुआ, अभी तक ज्ञान हुआ, तो अब फिर कृष्ण ने प्रश्न करे, सब कुछ ज्ञान हो गया तो अभी अनुभूति नहीं, विज्ञान नहीं हुआ, लॉ हमने सब पढ़ लिया, सब लॉ पढ़ लिया, किंतु किसी वकील के अधीन रह करके कुछ दिन प्रैक्टिस करके वस्तुतः हमने अनुभव नहीं किया, अभी स्वतंत्र रूप में काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार से यहाँ पर चैतन्य महापुरुष हैं, राधा तत्व का राधा प्रेम का ज्ञान तो हुआ, बस वहीं तक उन्होंने कहा मोर हैदर ज्ञान, हमारा मुझे ज्ञान हुआ, एवे जानू जानी नू साध साधन निर्णय, आगे आर आछे किचु सुनते हैं, मैंने अब तक साध और साधन का निर्णय हमने समझ लिया, यह बात ठीक नहीं हुई। कुछ समझा किंतु कुछ बाकी रह गया। उन्होंने ऐसे ही एक साधारण रूप में उन्होंने कहा, मैं जान तो लिया सब, किंतु कुछ अभी कह रहे हैं क्या आगे आछे की चू सुनते हैं, अभी और कुछ है मैंने बाकी रह गया। तब तो उन्होंने बताया अभी क्या बाकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो तत्व बचा, अभी विलास तत्व प्रेम तत्व दोनों का तत्व इत्यादि बदला है नहीं। जब तक ये सब किसके भाव हैं, यदि विलास भी होगा तो राधा जी के साथ, और रस भी होगा तो उन्हीं के साथ, सब कुछ अभी राधा जी का ही ये तत्व तो चलेगा अंत तक। कृष्ण स्वरूप कह राधा स्वरूप रस कौन तत्व प्रेम कौन तत्स्वरूप। उन्होंने कहा अब कुछ आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए तो ये बतलाइए कृष्ण का स्वरूप क्या है, राधा जी का स्वरूप क्या है, रस कौन तत्व और प्रेम कौन तत्व। चार तत्व हैं प्रेम के, कृष्ण का स्वरूप, राधा जी का स्वरूप, रस का तत्व और प्रेम का तत्व। कृपा कर यही तत्व कहत हमारे तुम बिना के हो यह निरूपित ना, आपके अतिरिक्त और कोई इसका निरूपण नहीं कर सकता, इसलिए आप कृपा करके बतलाइए। राय कहे यहाँ हमें किसी ना जानी, तुम्हें जे कहा वो से कहीं बानी, मैं तो कुछ नहीं जानता। दीनता से ये कह रहे हैं, तुम्हारी शिक्षाएं पड़ी जनु सुस्त साक्षात सर तुम्हें के बुझे तुम्हारे, मैं तुम्हारी शिक्षा से ही अर्थात शिक्षा के अपने प्रकार की होती है, दो प्रकार से साधारण, एक महान तो गुरु के रूप में और दूसरा होता है चैत्र गुरु के रूप में। ये दो रूपों में शिक्षा होती है, महान गुरु शिक्षा गुरु को कहते हैं और चैत्र गुरु अंतर्ज्ञान। ये दो रूप में कृष्ण कहते हैं, ये शिक्षा देते हैं। महंत गुरु माने, महंत माने भक्त, जो महत् श्रीमद् भागवत में आया है महत् से ये महंत गुरु
महान अंतःकरण,
तो वो जो महान जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया, हमारे गोस्वामी ने जो वर्णन किया है राधा और कृष्ण तत्व के पूर्ण पूर्ण को जान करके उनके लीला इत्यादि का महत्व जानते हैं और उसमें प्रतिष्ठित हैं, उनको कहेंगे महान गुरु। तो वो कृष्ण महान गुरु के रूप में और चैत्य गुरु के रूप में, चैत्य गुरु के रूप में यदि कोई ठीक ठीक भजन करेगा, श्रवण कीर्तन इत्यादि करेगा ठीक ठीक रूप में, साधुओं का संग भी ठीक से करेगा, उनकी सेवा करेगा, अंगों का पालन करेगा, तो उसके चित्त में भगवान प्रेरणा देकर के उसको उस चीज को प्रकाश करते हैं, उसके संदेह को दूर कर देते हैं। जैसे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी या कृष्णदास कबीरदास जो कि शाम गायत्री का जानना
चक्रवर्ती ठाकुर
चक्रवर्ती हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी थे, उन्होंने देख सुना सातों से अवर
करते
टीका करते करते उन्होंने देखा कि काम गायत्री में कहने 24 अक्षर होते हैं, गायत्री है ना 3 उसके विभाग हैं, प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होना चाहिए, सब गायत्री होगी प्रत्येक तीन चरणों में, 3 चरण के मंत्रों का वेद मंत्रों का नाम गायत्री होता है, कोई अनुष्टुप छंद होता है, कोई कुछ होता है, तो इसमें 3 चरण है। हमारे गायत्री में भी 3 चरण है, ब्रह्म गायत्री में और ओम में भी वही है, उसी का वो प्रकार है, तो 8-8 अक्षर सब में है, किंतु एक आदि अक्षर उसमें पड़ गई है। अब वो आदि अक्षर कौन है इसका निर्णय नहीं कर सके। क्यों नहीं निर्णय कर सके? आदि तो साफ निर्णय हो जाएगा, आधा अक्षर आदि अक्षर है, जो अंत में खंड तो है, आधा तो है, वो आधा है। किंतु उनको संदेह जब कब हुआ, जब चैतन्य चेतामृत कृष्णदास कविराज काल जब उन्होंने पढ़ा तो कौ को भी देखा जो कृष्ण का एक अंग है,
पूर्ण चंद्र
24 उसमें चंद्र हैं कृष्ण के अंगों में ना? 24 चंद्र कैसे हुए? देखो ये 5 नख चंद्र, 5 10 और पार का भी
20,
ये 20 चंद्र हो गए। और मुख चंद्र और कपोल चंद्र, अच्छा तब ये 23 कितना हो गया?
23 हुआ।
नेत्र कमल है, एक दो तीन, ये 23 हो गया, एक और 24 24 अक्षर हो गया। तो मैंने सभी पूर्ण चंद्र को, आधा वाला चंद्र उनको खोज ले, वो समझ रहे थे जैसे खंड तो ही आधार, किंतु तो को भी बतलाया उन्होंने जैसे ये पूर्ण चंद्र है। अब वो खोजते 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 भी, यदि मंत्र का तात्पर्य हमारे हृदय में नहीं अनुभूत होगा तो मंत्र क्या होगा? तो सिद्धि होगी नहीं। हम लोग के हृदय में ऐसी भावनाएं नहीं है, पहले तो हम समझ ही नहीं पाते हैं ये क्या चीजें हैं। ये कृष्ण का स्वरूप है, राधा जी का स्वरूप, कृष्ण का पूर्ण स्वरूप है ये मन। पहले बीज में है, पहला वाला में, और इसके बाद उसी के त्रिपदी में वो उनके पूर्ण अंगों का वर्णन किया, वही कृष्ण का स्वरूप। भजन करते 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 ये सब अंग जब उदित होंगे हमारे हृदय में, देखेंगे ये 24 चंद्र
साढ़े चौबीस
चंद्र ही हृदय में प्रकट होकर के कृष्ण को प्रकाश कर, उसमें राधा जी, ललिता, विशाखा, सतिया, माता पिता, भाई बंधु, सखा, कृष्ण का जो कुछ है सब भजन करते करते। इसीलिए एक कल्प नहीं, 10-10, 20-20, 50-50 कल्प लग गए इसको सिद्धि करने में। एक दो दिन नहीं, एक दो वर्ष नहीं, एक दो जन्म नहीं, इतने दिन परिपूर्ण रूप से इसकी सिद्धि के लिए लग गए। इतना कठोर साधन भजन किया तब हम लोग जिस गति से चल रहे हैं वो उस गति से चल रहे हैं जैसे कोई साधु महात्मा भजन कर रहे थे। एक महात्मा जी हमारे जैसे थे, भजन कर रहे थे इमली के पेड़ के नीचे। सुन रहे हैं? ठीक से बैठिए पेड़ के नीचे बैठ करके हमारे जैसे भजन कर रहे थे। एक गाल उससे भी बात कर रहे, एक गाल उससे भी बात कर रहे, कभी उधर भी देख लें, कभी उधर भी देख लें, ऐसे भजन कर रहे जैसा हम लोग करते हैं। कभी नींद भी आ जाती है, कभी सो भी लेते हैं भजन में, फिर उठ कर करते हैं। किसी दिन किसी कारण से रह गया तो वो मंत्र भी रह गया, कोई भी बात नहीं, दूसरे दिन पूरा कर लेंगे। इसी तरह से करते हैं, कभी कर रहे हैं तो कभी इधर उधर में चित्त भी चला जाता है, ऐसा भजन कर रहे हैं। नारद जी जा रहे थे, नारद जी को देख करके कंठित होकर पूछे, प्रभो कहाँ जा रहे हैं? बैकुंठ जा रहे हैं। तो हमारी एक अरज है, अरज ये है कि मैं भजन कर रहा हूँ बहुत दिनों से, किंतु अभी तक कोई लक्षण नहीं देख रहा हूँ जो प्रभु को प्राप्त हो। तो आप जा रहे हैं तो जरा प्रभु जी से पूछेंगे जो मैं कितने दिनों के बाद में उनको प्राप्त होऊंगा। तो नारद जी चल गया, ठीक मैं पूछूंगा। गए और भगवान से पूछा ये कितने दिनों के बाद में उस भक्त को दर्शन देंगे? तो उन्होंने कहा जिस इमली के पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ है उसकी जितनी पत्तियां हैं उतने
जन्म के बाद
उतने जन्मों के बाद में साधन करते करते तब तो वो हमको पाएगा। और इतना सुन करके वो बड़ा प्रसन्न हो गया। वहां से नारद जी आए, नारद जी को पूछा, नारद जी कतराने लगे जिससे तो क्या इसका मन खराब हो जाएगा। जब सुना, जब नारद जी ने उसको बताया कि इमली के जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद में तब तुम्हारे ऊपर में कृपा, आनंद से मस्त हो गए। अब गारंटी हो गई कि मिलेंगे, भले ही 10,00,000 करोड़ जन्म के बाद में मिले किंतु अब तक मिलेंगे। बस आनंद होकर के एकदम नाचने लगा, तन्मय हो गया, एक तान लगा दिया। बस साथ ही साथ में प्रभु वहां पर पहुंच गए, उसको दर्शन दिया। तो प्रभु नारद जी ने कहा जो प्रभु आपने तो इतने जन्मों के बाद में कहा था और आप अभी आ गए, जो तो वो जिस गति से पहले भजन कर रहा था उस गति से उतना ही था, उतने जन्मों के बाद उसको दर्शन दे, किंतु अब जो इसमें जो सुन करके इतना तन्मय हो गया इसलिए बाध्य हो करके हमको मैं आ गया। उसी तरह से हम लोगों के साधन भजन एक कार्यता, ऐसे ही भगवान के लिए विह्वलता यदि हो तब तो हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को अब कहा जा अब जीवित हम नहीं रहेंगे, जबकि भजन ही नहीं हुआ हमारा, कभी मंत्र को ही नहीं समझ पाया, उसकी स्तुति नहीं हुई, तो क्या हुआ। बस राधा कुंड में जाकर के फलांग मारेंगे मरेंगे हम डूब कर, कितने में आकाश बने आकाश बनेंगे, मरो मत, मरने से भगवान नहीं मिलते। मैं राधा जी बोल रही हूँ, तुम इसी तरह से आराधना करो। और एक व्याकरण है, क्या नाम उसका,
वर्णागम भाष्य,
वर्णागम भाष्य, वर्णागम, वर्णागम भाष्य व्याकरण
भाष्य
भाष्य व्याकरण, उसमें जाकर के तुम देखना, उसमें वेद मंत्रों में जहाँ पर बी आए और उसके पहले य हो पहले, तो बी का पहले वाला जो य अक्षर है वो आता है, ये उसका नियम है। दूसरे लेकिन लिख खुल गई और जाकर के व्याकरण बड़ी मुश्किल से खोजा, उसमें था तो वो उपलब्ध भी नहीं, देखा देखा कहते अरे ये तो इसमें ठीक है। अब उसमें देखा मिला करके मंत्र में, मंत्र मिला करके देखा उस अक्षर के पहले वाला य यही आधार है, वही है चंद्र, अर्धचंद्र, और बाकी सब पूर्ण चंद्र। अब तो बड़े प्रसन्न हुए और कुछ दिनों के बाद में ठीक एक एक अक्षर कृष्ण के वो एक एक अंग एक जगह सन्निहित होकर उनको उसी रूप में उनको दर्शन। हम लोग भी साधन भजन करते करते यदि ऐसा कर सकें तब तो वो हो गया। जैसे महाप्रभु जी भी एक ऐसा ही निर्देश दे रहे हैं, गुरु जी से जाकर के कहेंगे गुरु गोसाई की मंत्र दिला मोरे, तुमने ऐसा कौन सा मंत्र मुझे दे दिया, मैं तो पागल हो गया। और वो मंत्र हमें हंसाता है, गाता है, नाचता हूँ, गाता हूँ, कभी गिरता हूँ, ये मंत्र के प्रभाव, ये मंत्र आपने जो दिया मैंने किया, और करते करते मैंने देखा क्या, एक श्याम किशोर एक बार अत्यंत सुंदर पीली चादर ओढ़े हुए, हाथ में बंसी मुख में होठों पर, स्मित हर्ष से हमारे तरफ में देख रहा है, मानो हमें आकर्षण कर रहा है। मैं उसके तरफ में दौड़ता हूँ और दौड़ करके यही पकड़ने के लिए गया, थोड़ा सा हट गया, फिर मैं इधर दौड़ा, इतने में इधर छिस गया, मैं वहीं पर थाम से गिर गया, फिर मैं पागल हो गया उसके लिए, क्या मंत्र है ये जो ऐसा हो गया। गुरु जी उसको गले से लगा दिए, महाप्रभु गुरु जी बोले जैसे यही तो मंत्र का सब मंत्र आपके आराध्य के रूप में प्रकट हो जाए तब तो हम लोग इसके लिए चेष्टा करते हैं, ऐसा साधन भजन करते हैं, विद्याशा करते तपस्व यही मंत्रों का फल। मंत्र में और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं। तो यहाँ पर
नारद जी के प्रसंग
याद करें, मैं ये गुरु के लिए कह रहा हूँ, भगवान अंतर रूप में प्रेरणा देते हैं,
महंत गुरु,
महंत गुरु के रूप में और ये दोनों प्रत्यक्ष शब्द हैं। दोनों यदि हृदय से प्रार्थना करें, विश्वास करते हैं, जरूर होता है और भीतर में प्रेरणा देते हैं। लोगों को इतना विश्वास नहीं होता, किंतु विश्वास करने से गुरु जी ने मंत्र दे दिया, गुरु जी और इसके बाद में क्या है, और कुछ है? अरे साधन का करो, साधन करो, साधन नहीं करेंगे, जितने साधन करेंगे ये देखेंगे जो वो जरूर कुछ ना कुछ स्थिति हमारे हृदय में होगी। तो हृदय प्रेरण करो, जीवा कहा उबानी, आप कृपा करके हमारे हृदय में प्रेरणा देना, राधा रामानंद पाते और जीवा से वाणी कहलाते हैं। ये मैं जो कुछ कह रहा हूँ आपकी कृपा से ही, आपकी प्रेरणा से ही कह रहा हूँ, कि कहीं भालमंद किसी भी न जाने मैं क्या कर रहा हूँ, सिद्धांत तब ठीक है कि देखी के ये मैं नहीं समझ। प्रभु कहे मायावादी, अमित तो सन्यासी भक्ति तत्व नहीं जानी, मायावादी बात माँ प्रभु जी दन्य की मूर्ति, इसलिए ये कहा मैं मायावादी। से मायावादी किसको कहते हैं? जो भगवान के किसी भी विलास को नहीं मानता है, भगवान निराकार है, निरंजन है, उनका कोई रूप नहीं है,
निर्विशेष,
उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई भाव नहीं है, जिनमें कोई करुणा नहीं है, कुछ भी नहीं है,
जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं,
तो इसको कहते हैं
मायावादी।
मायावादी माया के वजह से कृष्ण ने यह राशि इत्यादि की, ये सब माया। कृष्ण जो जो कुछ कृष्ण का हमें मालूम हो रहा है ईश्वर, ये सब माया, संसार झूठा है, इसको कहते हैं ये माया के वजह से दिखता है। यदि पूछा जाए माया क्या है उनसे, तो कहेंगे माया भी झूठी है, सत भी नहीं, असत भी नहीं, सत असत अनर्वचनित का वचन के द्वारा व्यक्त भी नहीं किया जा सकता, ऐसी सचमुच में क्या चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही थे? ऐसे थे? मायावादी सन्यासी थे? ऐसा तो उनके जीवन में नहीं देखा जाता, बल्कि मायावादी बड़े बड़े धुरंधर लोग जो थे महाप्रभु के संग के प्रभाव से, वो लोग मायावाद छोड़ करके भक्त बन गए, जैसे और प्रकाशानंद सरस्वती और लाख को मायावादी, नवदीप के पड़ुआ सब मायावादी थे। इसके बाद में उसमें भारतवर्ष में मायावाद और द्वैतवाद शंकराचार्य का यह विचार चारों तरफ में चल रहा,
प्रकाशानंद शिष्य भी
सब लोग मायावादी। अभी भी भक्ति का कुछ प्रचार होने पर भी अधिकांश लोग मायावादी, यहाँ तक कि कल्याण गोरखपुर का जो कल्याण प्रेस है वो सब मायावादी हैं। मायावादी का कहना क्या है, अभी हम लोग कल गए थे वृंदावन में राधा रमण जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, एक महीने से कोई उत्सव चल रहा है, रोज नया नया फूल बंगला होता है और समझते हैं कि 20-25 हजार लगता होगा खर्चा, कम से कम 10-15 हजार में नहीं है, 10 नहीं है, 10 इतने दिन एक महीने तक मान लिया कि ये 5-5 हजार रुपया तो साधारण में लग जाता है, एक महीने तक रोज हुआ है, कितना ये सब लोग खर्च कर रहे हैं। प्रसिद्ध राधा रमण का मंदिर में प्रतिदिन ऐसे उत्सव सब संगीत इत्यादि होता है। भारतवर्ष में सबसे बड़े जो ध्रुपद के माने हुए प्रतिष्ठित गायक थे जिनको पद्म भूषण उपाधि मिली, उनके लड़के कोई हैं
पद्मश्री,
वो उनको भी पद्म मिला है
पता
नहीं। वो यहाँ पर गायन करने के लिए आई, उनको 5,000 या 3,000 रुपया उनको मासिक मिल रहा है और वो गा रहे थे, हम लोग सुने। तो वो गायन कर रहे थे, क्या गाना था
भाया रे बंसी वाला मन भाया रे।
एक घंटा उनका धुप ये चलता रहा,
भाया रे भाया।
एक घंटा
कहीं
फिर कहीं तुम
कहीं मोहम्मद कहीं
मोहम्मद कहीं मूसा
कहीं ईसाई कहीं राम कहावा रे
और कहीं राम कहावा कहीं मोहम्मद कहीं ईसा कहीं
राम कहावा
रे और भाया रे मन भाया रे बंसी वाला
सावलिया
मन भाया रे। बहुत सुंदर से गा रहे थे और सभी बड़े बड़े लोग सब साधक हैं। तब वास्तव में वो गान का जो सुर था वास्तव में उसमें से ये तो थी
सिद्धांत।
आपने कहा ये सब चौपट कर दिया, ये राधा रमन का हमारा द्वारकाधीश जो नाम है और नंद नंद है दोनों एक नहीं है। वहाँ मोहम्मद ईसा राम बौद्ध और सब जितने हैं सब एक हो गए। अरस्ता कोई हमारे शास्त्रकारों ने बेकार का इतना परिश्रम करके ये सब निर्माण किया भक्तिस्वामी सिंधु और जिसको जगत मान्यता दे ये सब बेकार था। उन्होंने का ये कहना है कि भगवान निर्विशेष निराकार हैं, असल में वो भी मायावादी है अद्वैतवादी। कहते हैं कि दुर्गा काली राम नृसिंह वामन मोहम्मद ईसा बुद्ध मोहम्मद जितने भी तत्व, यहाँ तक कि गोंगा एक होता है पहाड़ी जातियों के और सब जितने भी हैं सब एक ही चीज हैं, एक व्यक्ति है। उसके यहाँ जाने के लिए बहुत से रास्ते हैं, जैसे यहाँ से हमको हरिद्वार जाना है तो हम
अलीगढ़ से जा सकते हैं,
दिल्ली होकर के जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं,
ट्रेन से
भी जा सकते हैं और बहुत से साधन हैं, बहुत से मार्ग हैं। जिस मार्ग से हम जाना चाहें वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसलिए नाम का भेद केवल है, दुर्गा काली शंकर हनुमान और कृष्ण ये सब वैष्णवों ने संप्रदायवादियों ने व्याख्यानुषी विचार के अनुसार में इसको ऐसा करते थे, वास्तव में ऐसा नहीं, किंतु यह विचार ठीक नहीं। क्लास एक ही रहेगा न, क्लास विभिन्न होने से मस्तिष्क का विकास होगा। सब क्लास तो निकाल दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये मत रखो। ये सब डिवीजन किस लिए रखता है? वकालत में भी 3 वर्ष का ये क्यों रख दिया कोर्स? एक ही दिन का रख दो कोर्स बस हो जाए, ये ठीक नहीं। ये सब साधना के तारतम्य के अनुसार में भगवत दर्शन का भी तारतम्य है, नहीं तो उत्कर्ष नहीं हो सकता। अल्लाह माने होता है सबसे बड़ा और खुदा माने खुद, जो हम लोगों का ब्रह्म है ना, हम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, वो खुदा, खुदा माने खुद ही, हम भी खुदा हैं, ये भाव एक है। किंतु जहाँ पर कृष्ण की ये सब लीला विलास, जहाँ पर की कौटि कोटि गोपियों के साथ में सखाओं के साथ में तरह तरह के विलास कर रहे हैं, विश्व ब्रह्मांड को आनंदित कर रहे हैं और आनंद स्वयं ले रहे हैं, दूसरों को आनंदित कर रहे हैं, ये सब एक हो जाएगा? तारतम्य उनमें विचार में ये सब, इसलिए किसी न किसी रूप में आज अधिकांश लोग वृंदावन में रहते हुए धर्म का परिचय देकर के भी अद्वैतवादी ही स्वरूप कर रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा संग नहीं है, वो तो संगीत का अभ्यास करते हैं, धर्म का साधन तो करते नहीं, धर्म का साधन करते और भागवत पुराण ये सब पढ़ते तो कुछ मालूम है, श्रीमद् भागवत को बिना पढ़े हुए इन सब तत्वों का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेमा पुनर्थम। इसलिए बिना भागवत को सुने और उसका संगति किए कभी भी भगवत तत्व का ज्ञान कभी भी संभव नहीं है, और ऐसे उन्नत ज्ञान को जो देते हैं वही हमारे भगवान से भी अधिक। जो चीज इनको समझता नहीं वो गुरु तत्व को नहीं समझता, और गुरु कारिणी नहीं होता, इसीलिए यदि वो समझ जाता थोड़ा सा भी इस बात को तो गुरु का शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु में कोई अंतर नहीं समझेगा, एक समझ लेगा, और जितना भगवान के प्रति आकर्षित होता चला जाएगा गुरु के प्रति भी वैसे ही आकर्षित। आज राय रामानंद जैसे महाप्रभु को सुना रहे हैं, महाप्रभु कितने कृतज्ञ हो रहे हैं, कितने पुलकित हो रहे हैं, कितने आनंदित, ये कौन है? स्वयं कृष्ण अपना तत्व तो उनमें बतला रहे हैं, और फिर सुन करके अभा नहीं रहे। इसलिए कहते हैं महाप्रभु अपने को